हरे कृष्णा। पिछले बुधवार हमने दुर्योधन के कहे हुए वचन लिए, जिसमें दुर्योधन ने अब द्रोणाचार्य आचार्य द्रोण से कहना प्रारंभ किया है। और क्या कहा द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने, पिछला श्लोक याद है, पश्यैतान पांडु पुत्रानाम आचार्य महतीं चमुम। तो यहां पर दुर्योधन वो आचार्य बुला रहा है द्रोणाचार्य को, क्योंकि वास्तविक रूप में द्रोणाचार्य आचार्य हैं और हमने द्रोणाचार्य की तुलना की कंस से, कि कंस उसे जब पता लगा कि उसकी मृत्यु का कारण उसी की बहन है तो मारने पर उतारू हो गया, और यहां पर द्रोणाचार्य जब इन्हें पता लगा कि इनके मृत्यु का कारण द्रुपद का पुत्र दृष्टद्युम्न है तो उसे आशीर्वाद दिया द्रोणाचार्य ने, विजयी भव। तो यहां पर हम दोनों की तुलना हम पिछली बार लिए थे कि आचार्य है द्रोणाचार्य, जिन्होंने जो उन्होंने कहा उसका आचरण किया। परंतु द्रोणाचार्य इनकी उदारता बताई गई पिछले श्लोक में और दुर्योधन की अधमता। और दुर्योधन की अधमता क्या है कि दुर्योधन एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ की भूमिका निभा रहा है और अलग अलग प्रकार की जो नीतियां हैं राजनीति में, साम दाम दंड भेद, जिसमें से दुर्योधन भेद नीति यहां पर उपयोग में ले रहा है और वो भेद उत्पन्न करना चाहता है। हालांकि वो जानता है कि द्रोणाचार्य वो अब तक पांडवों के ही पक्ष में है, हालांकि खड़े हैं वो दुर्योधन के पक्ष में, परंतु हृदय से वो पांडवों के पक्ष में है। तो दुर्योधन जानता है कि शारीरिक रूप से किसी पक्ष में खड़े होने का कोई अर्थ नहीं। दुर्योधन जानता है कि जब तक आंतरिक रूप से द्रोणाचार्य मेरे पक्ष में नहीं खड़े होंगे तब तक वो उत्साह से मेरे लिए युद्ध नहीं करेंगे, और यही डर दुर्योधन को शुरुआत से दुर्योधन में था और अब तो और बढ़ गया, क्योंकि अब जब इसने इतनी बड़ी सेना देखी, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, जब द्रुपद पुत्र द्वारा व्यू रची हुई इतनी बड़ी सेना, या अर्जुन द्वारा व्यू रची हुई इतनी बड़ी सेना देखी तो दुर्योधन वो थोड़ा सैंग बैंग हो गया, जिसे कहते हैं हिल गया वो थोड़ा। और अब दुर्योधन वो अपने कपटपूर्ण वचनों से द्रोणाचार्य को उकसाना चाह रहा है। तो पिछले श्लोक में उसने द्रोणाचार्य को कैसे उकसाया या प्रयास किया उकसाने का, कैसे? सबसे पहले तो कि आपका शिष्य, आपका ही शिष्य, आप द्वारा ही आशीर्वाद मिला हुआ आपका शिष्य ये दृष्टद्युम्न आपके सामने खड़ा है। तो हालांकि बाकी सब भी द्रोणाचार्य के ही शिष्य थे, अर्जुन भीम ये सब भी द्रोणाचार्य के शिष्य थे, परंतु यहां पर विशेष रूप से वो तव शिष्येण, कि आपका वो शिष्य उसे देखिए पहले, इन सबको मत देखिए। कौन से शिष्य को देखिए? द्रुपद पुत्रेण। और याद दिलाया कि वो आपका जो प्रतिद्वंद्वी द्रुपद का पुत्र है, और धीमता, ये व्यंग की तरीके से दुर्योधन कह रहा है कि वो धीमता है और आप कौन है? मूर्ख, क्योंकि आपने ऐसे आपके शिष्य को आशीर्वाद दिया कि वो आपको मारे। अभी इसे कोई मूर्ख ही कहेगा ना, कि कोई आया है सामने से, सामने से बोल रहा है कि मैं पैदा हुआ हूं आपको मारने के लिए, आशीर्वाद दो, और कोई आशीर्वाद भी दे रहा है। तो या तो जो आया है सामने से वो बड़ा मूर्ख है, परंतु यदि वो आशीर्वाद लेकर जा रहा है तो वो बहुत बड़ा बुद्धिमान है। कि ये ऐसे हुआ कि कोई जेब कतरा सामने से बोल रहा है पॉकेट निकाल, तो एक तो वो मूर्ख होगा जेब कतरा जो सामने से पूछ रहा है कि दो तुम्हारा पॉकेट, और इससे बड़ा मूर्ख ये होगा जो निकाल कर दे देगा, है ना। तो जब वो निकाल कर दे देगा तब वो सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, कि उसने पता नहीं क्या माया रची इसके ऊपर कि बोलने मात्र से अपना पॉकेट निकाल कर दे रहा है। तो यहां पर धीमता दुष्टदुम्न को दुर्योधन कह रहा था, और इसलिए अब द्रोणाचार्य वो केवल श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ये सारे जो ताने मार रहा है ना दुर्योधन, ये सारे तानों को सुन रहे हैं द्रोणाचार्य। और अब जो अगला श्लोक है, आज हम 4 से लेके 7 तक श्लोक लेंगे, क्योंकि इन सब में दुर्योधन केवल कौन कौन से महारथी खड़े हैं पांडव सेना में उनकी सूची दे रहा है दुर्योधन। तो एक एक कर अब बता रहा है दुर्योधन कि कौन कौन वहां पर खड़े हैं। द्रोणाचार्य को दिखा रहा है, देखो और भी देखो, केवल वो एक ही नहीं है तव शिष्येण, और भी कितने खड़े हैं सबको देखो। तो क्योंकि वो ये सारे श्लोक इन योद्धाओं की सूची है, तो इसे हम एक साथ लेंगे और इन 3-4 श्लोकों को एक साथ लेकर फिर आगे दुर्योधन अपनी सेना के विषय में क्या बता रहा है उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। तो पीछे दोहराइए, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमः नायका मम सैन्यस्य सम्यार्थं तान् ब्रवीमि ते। तो पहला जो 4th श्लोक है इसे हम लेंगे। यहां पर अब दुर्योधन आगे कहता है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। तो यहां पर 3 योद्धाओं के विषय में पहले दुर्योधन बता रहा है कि कौन कौन से 3 योद्धा, और उनकी तुलना दुर्योधन कर रहा है भीम और अर्जुन से। अत्र शूर महेश्वास, कि ये शूरवीर और ये महेश्वास, इन दोनों के विषय में बताएंगे कि ये दोनों का अर्थ क्या है। कि ये इस प्रकार के महारथी, महारथ कहा है उन्हें, इस प्रकार के महारथी ये वहां पर सामने खड़े हैं। और सबसे पहले इन 3 योद्धाओं को दिखा रहा है दुर्योधन द्रोणाचार्य को। यहां पर देखिए, दुर्योधन का हरेक शब्द, हरेक अक्षर वो व्यंग्य से भरा हुआ है, उसके अंदर सरकैज़म है। वो ताने मार रहा है कि अब यदि द्रोणाचार्य वो दुर्योधन को कहे क्या मुझे दिखता नहीं, वो लोग खड़े सामने, हाँ क्या मैं अंधा हूं तुम्हारे बाप जैसा? तो मानो द्रोणाचार्य ये कहे मन ही मन कि भाई तुम मुझे दिखा रहे हो ये सब कुछ, क्या मुझे दिखता नहीं वो द्रुपद वहां खड़ा है, ये सात्यकी यहां पर, ये विराट यहां पर, परंतु ताने क्यों? क्योंकि दुर्योधन वो इस प्रकार से कह रहा है कि तुम जिस प्रकार से देखोगे हे आचार्य वैसे मत देखो, मैं तुम्हें जो दिखा रहा हूं मेरी दृष्टि से देखो। इसलिए कई बार हम अपनी दृष्टि से जब किसी वस्तु या व्यक्ति को देखते हैं तो वो व्यक्ति अपनी दृष्टि से अलग दिखता है, परंतु जब कोई और हमें उसी वस्तु को दिखाता है तब फिर हमें समझ में आता है। जैसे कि जब शिक्षक, जो टीचर स्कूल में जब ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखता है ना, तो जब हम अपने बेंच पर बैठे हुए देखते हैं तो हमें कुछ और समझ में आता है, परंतु लिखने के बाद फिर जो वो बताता है कि ये इसका अर्थ ये है, तब फिर उस शिक्षक के दृष्टिकोण से वही लिखा हुआ वाक्य अब अलग दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं। तो दुर्योधन जब इतनी बार कह रहा है द्रोणाचार्य को देखो देखो देखो, उसका अर्थ क्या है कि अपनी उन दो आंखों से मत देखो, ये मेरी दो आंखों से देखो कि मैं जो दिखा रहा हूं। और यहां पर वो तीन योद्धाओं को सबसे पहले इस श्लोक में दिखाता है, युयुधान अर्थात सात्यकी, महाराज विराट और महाराज द्रुपद। और देखिए ये तीनों को सबसे पहले इसने दिखाया, क्योंकि इसके पीछे भी गूढ़ रहस्य है कि सबसे पहले तो द्रुपद पुत्र को दिखाया और फिर कहा कि देखो वो केवल अपने अकेला नहीं आया, वो दृष्टद्युम्न बाप को लेकर आया है, उनके पिता भी, वो उसको भी देख लो। तो यदि दुर्योधन ने ये सोचा कि यदि केवल दृष्टद्युम्न को देखकर इतना क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ होगा तो द्रुपद को दिखाता हूं, तो द्रुपद को दिखाया कि वो भी वहां पर देखो कोने में खड़ा हुआ, और महाराज विराट और युयुधान। युयुधान बाकी दो के विषय में तो हमने थोड़ा सुना होगा और भी आज सुनेंगे, परंतु युयुधान ये योद्धा इनके विषय में इतना ज्यादा कोई सुने नहीं होंगे। युयुधान का दूसरा नाम था सात्यकी, और सात्यकी ये पहले कौरव सेना में था, क्योंकि हमने वो कथा कही कि जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आए युद्ध के पहले, और दुर्योधन ने नारायणी सेना ले ली, तो सात्यकी नारायणी सेना में था। तो जब दुर्योधन ने नारायणी सेना ले ली तो अब सात्यकी को दुर्योधन के पक्ष में खड़ा होना था। तो शंख बजने से पहले या शंख बजने के बाद, कोई तो इनमें से एक की अनाउंसमेंट हुआ था, युधिष्ठिर महाराज ने अनाउंसमेंट किया कि अब भी समय है, कौन किसके पक्ष में युद्ध करना चाहेगा, अब भी समय है कि यदि कोई पांडव सेना से वहां जाना चाहता है तो अब चले जाए, और वहां से कोई यहां आना चाहता है तो यहां आ जाए। तो पांडव सेना से कोई वहां तो जाने वाला था नहीं, क्यों ये सूचना सबको दी गई थी, क्यों ये अनाउंसमेंट हुआ था? क्योंकि एक युद्ध का नियम है कि युद्ध के पहले सभी अपना अपना चुनाव कर लिए थे कि हम किसके पक्ष में लड़ेंगे, परंतु जब आमने सामने सेनाओं को देखने के बाद फिर पता लगता है कि गलती की या तो फिर बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर वो बोले कि अरे मैंने गलती की यहां पर इनके पक्ष में आकर युद्ध करने के लिए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ये जानते थे, वो तो धर्मराज, तो वो तो जानते थे कि हमारी तो केवल 7 अक्षौहिणी सेना है और वहां पर इनकी है 11 अक्षौहिणी सेना। तो युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि जब 11 अक्षौहिणी सेना और उसके सामने कौन कौन, ये भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, इन सबको खड़ा हुआ देख, हो सकता है कि मेरे पक्ष के जो सैनिक हैं वो थोड़ा डर जाए, तो इसलिए इनके लिए जाओ जाओ, यदि जाना है तो अभी भी चले जाओ। और युधिष्ठिर महाराज ये भी सोच रहे थे कि यहां पर भगवान श्री कृष्ण को जब कोई देखेगा तो हो सकता है कि वहां से कोई यहां पर आ जाए, और वहां से फिर कौन आए, सात्यकी। तो सात्यकी वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब ये अनाउंसमेंट होगा, मैं भागू यहां से यहां क्योंकि उस समय दुर्योधन कुछ नहीं कर सकता, उस समय दुर्योधन कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए दुर्योधन ये द्रोणाचार्य को दिखा रहा था कि देखो ये अभी अभी हमारे पक्ष में खड़ा था, ये सात्यकी उधर भागा, देखो। तो ये एक और टॉन्ट कि ये सात्यकी जैसे भागा है, आपका भी कोई भरोसा नहीं है, तो देखो वो सात्यकी वहां पर खड़ा। तो सात्यकी के विषय में कहा गया है कि सात्यकी वो बहुत प्रेम करता था भगवान श्री कृष्ण से, और महाभारत के युद्ध के पश्चात 7 लोग उस रणभूमि में जीवित थे, 5 पांडव, भगवान श्री कृष्ण और सात्यकी, पांडवों के पक्ष से, घोड़े भी तो ये लोग जीवित थे, ये तो इनमें से सात्यकी थे जो शुरुआत से लेकर अंत तक पांडवों और कृष्ण के साथ थे। और सात्यकी ये गुरु बने, युद्ध कौशल सिखाने के गुरु बने अभिमन्यु के, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु के सात्यकी गुरु थे। और सात्यकी के विषय में और भी बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण वो शांति दूत बनकर गए हस्तिनापुर, तो वहां पर दुर्योधन ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा तो दुर्योधन वो अपनी जलन को सहन नहीं कर पाया, और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को ये कह रहे हैं कि तुम्हारे दुर्व्यवहार के वजह से ये युद्ध होगा, क्योंकि तुम ऐसे हो दुर्योधन इसके कारण। वहां पर भगवान श्री कृष्ण, ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण अकेले गए हैं, दुर्योधन और धृतराष्ट्र तो भगवान डर डर के बोल रहे थे दुर्योधन मान जाओ दुर्योधन, नहीं, भगवान सीधा उसके मुंह पर कि ये दुर्योधन के वजह से धृतराष्ट्र तुम्हारा सारा कुल नष्ट होने वाला है, और मैं एक कृपा कर रहा हूं कि मैंने उनको मनवा कर यहां शांति दूत के रूप में मैं आया हूं, नहीं तो मैं यदि उनको कहता तो वो सेना लेकर चढ़ावा तुम्हारे ऊपर करने वाले थे। तो दुर्योधन इसे सहन नहीं कर पाए, और भगवान ने केवल इतना ही प्रस्ताव रखा, 5 गांव दे दो और कुछ नहीं चाहिए उन्हें, तुम यहां पर तुम्हारे हस्तिनापुर में सड़ते रहो अपने बाप के साथ, उन्हें केवल 5 गांव दे दो। परंतु दुर्योधन वो बोला कि सुई के नोक के जितना उतनी भूमि भी मैं नहीं दूंगा। और दुर्योधन इतना कहने के बाद दुर्योधन बाहर निकल गया, राजमहल से बाहर निकल गया। तो अभी बाकियों को सबको लगा कि ये दुर्योधन तो बात करने के लायक नहीं है, तो वहां पर सात्यकी थे, तो सात्यकी इन्होंने, इनके अंदर मन में कुछ संशय हुआ कि दुर्योधन जरूर कुछ ना कुछ बाहर उपद्रव कर रहा होगा, ये कोई शांति से बैठने वाला प्राणी नहीं है, तो सात्यकी बाहर गए राजमहल के, और बाहर जाकर क्या देखते हैं कि दुर्योधन पूरी सेना को इकट्ठा किया हस्तिनापुर के महल के बाहर भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए। तो सात्यकी हंस के बोलता है, दुर्योधन तुझे शर्म नहीं आती? अरे तू एक तो मान नहीं रहा जो प्रस्ताव तेरे सामने वो रख रहे हैं, ऊपर से तू अपने आप का ऐसा खिलवाड़ करवा रहा है कि अब सेना इकट्ठा किया वो भी उनको बंदी बनाने के लिए। तो सात्यकी फिर हंसते हंसते राजमहल में जाते हैं और कहते हैं, वो देखो दुर्योधन बाहर क्या कर रहा है, वो निखट्टू बाहर सेना इकट्ठा किए है और वो भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए। तो वहां पर जब ये भगवान श्री कृष्ण ने सुना तो भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे, और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पहले अपना विश्व रूप धृतराष्ट्र को दिखाया। अब आप लोग पूछेंगे, धृतराष्ट्र तो अंधा, तो धृतराष्ट्र ने देखा कैसे? अपने जीवन में धृतराष्ट्र एक ही बार देख पाया भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। उस समय जब शांतिदूत बनकर भगवान आए तो भगवान श्री कृष्ण ने कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को आंखों की रोशनी दी, और कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र पहली दफा अपने जीवन में वो क्या देखा, भगवान श्री कृष्ण का विश्वरूप। सोचिए धृतराष्ट्र का सौभाग्य कि उसने अपनी आंखों से केवल भगवान श्री कृष्ण का ही रूप, वो भी विश्व रूप देखा। परंतु दुर्भाग्य धृतराष्ट्र का ऐसा कि उसकी आंखों ने भगवान का ऐसा रूप देखने के पश्चात भी वो सुधरा नहीं, और फिर दुर्योधन ने भी देखा। तो यहां पर सात्यकी के कारण भगवान के विश्वरूप का दर्शन इन दोनों को हुआ। तो अब यह प्रश्न पूछा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के विश्वरूप दर्शन की विभिन्न प्रतिक्रियाएं क्या थी। जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं कि दुर्योधन ने देखा, धृतराष्ट्र ने देखा, और किसने देखा? आगे अर्जुन ने देखा और यशोदा माई। तो यदि हम इन चारों को लें तो हम देखना चाहेंगे कि क्या क्या प्रतिक्रियाएं इन चारों की हुई भगवान के विश्वरूप को देखने पर। तो सबसे पहले दुर्योधन, जब दुर्योधन ने भगवान का विश्वरूप देखा तो दुर्योधन की प्रतिक्रिया, ए कोई जादूगर है, ये कोई जादूगर है, ये कोई सरकार, पीसी सरकार जैसा कोई नहीं जानता कि सभी सरकारों के सरकार वो हैं भगवान। तो दुर्योधन की प्रतिक्रिया कि ये कोई मायावी, कोई जादूगर है केवल, ये दुर्योधन की प्रतिक्रिया थी जब विश्वरूप देखा। धृतराष्ट्र ने जब विश्वरूप देखा तो धृतराष्ट्र कहता है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, मैं अब जान लिया हूं, परंतु दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। तो यहां पर देखिए कि जब कोई व्यक्ति दुर्योधन के मति वाला होता है तो चाहे भगवान भी सामने आ जाए उसके, जब दुर्योधन अंदर है किसी के तो भगवान भी सामने आए तो वो कहेगा, ये क्या कोई जादूगर है, कोई मायावी है, कोई नाटक कंपनी का कोई है, कोई टीवी सीरियल का कोई पहन पहन के आया है। और जो धृतराष्ट्र जैसे, वो धृतराष्ट्र में थोड़ी बुद्धि थी दुर्योधन से ज्यादा, बाप था तो अक्सर जो बाप होते हैं बेटों से ज्यादा थोड़ी बुद्धि होती है उनमें। तो धृतराष्ट्र समझ गया कि ये भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, परंतु उसकी आसक्ति इतनी कि आसक्ति इतनी होने के कारण भी वो इस बात को हजम नहीं कर सका कि मुझे शरणागत होना है। अरे बोल रहा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है फिर भी कहता है कि नहीं। तो ये दूसरी श्रेणी के लोग होते हैं ये दुर्योधन से थोड़े अच्छे होते हैं कि कम से कम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो मान लिया, परंतु ये किंतु परंतु रहता है उनके जीवन में। और अक्सर हम देखते हैं कि कलयुग में बहुत से इस कैटेगरी में पाए जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, किंतु परंतु ये सब आता रहता कि वो भगवान है किंतु ये जो हम जिसको पूज रहे हैं, ये जो हमारे कुल देवता या कुल देवी या जो कोई, तो ये किंतु परंतु बीच में आ जाता है। और इससे ऊपर है जैसे अर्जुन, अर्जुन ने भगवान का विश्वरूप देखा तो अर्जुन की प्रतिक्रिया भगवान से क्षमा याचना, केवल क्षमा याचना नहीं बल्कि शरणागति। तो ये और ऊपर स्थिति, धृतराष्ट्र से ऊपर स्थिति कि अर्जुन ने मान लिया परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम नित्यम। तो यहां पर अर्जुन ने ये सब कुछ बोल दिया कि आप ही हैं, परंतु केवल बोला नहीं, और बोलने के बाद ये नहीं, ठीक है आप ही हैं सब कुछ, उसके बाद नहीं कि चलो मैं चलता हूं अपने कुल देवता के पास, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आप उधर ही रहना। अर्जुन ने क्षमा याचना पहले कि मैंने जो जो अपराध किए होंगे, आपको मैंने एक मित्र के समान समझा, एक सखा के समान, आपके साथ मैंने क्या क्या कैसा व्यवहार नहीं किया, क्षमा याचना, उसके पश्चात शरणागति। तो ये तीन प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए यदि कोई अर्जुन के पद चिन्हों पर चलना चाहता है, कि पहले तो भगवान का गुणगान, फिर क्षमा याचना, और फिर शरणागति। वो गुणगान और क्षमा याचना परिणित होनी चाहिए शरणागति में भगवान के। तो ये है अर्जुन, और अर्जुन से ऊपर है यशोदा माई। तो यशोदा माई ने जब विश्वरूप देखा तो यशोदा माई तो इतना प्रेम था कि यशोदा माई सोच रही थी कि ये कोई मेरा पुत्र है, ये कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं हो सकता, कोई देव माया होगी। अब देखिए, यदि कोई यशोदा माई के गाढ़े प्रेम को नहीं जानता तो उसे लगेगा कि दुर्योधन और यशोदा माई की प्रतिक्रिया एक जैसी है ना, दुर्योधन की और यशोदा माई की प्रतिक्रिया एक जैसी दिख रही है। दुर्योधन ने भी क्या कहा, मायावी है, यशोदा माई भी क्या कहती है, देव माया है। तो कोई कहेगा इन दोनों में अंतर क्या है, बहुत बड़ा अंतर है। जो नास्तिक होते हैं वो भगवान को एक सर्वसाधारण मनुष्य मानते हैं, और जो ब्रजवासी वो भी भगवान को अपना ही सर्वसाधारण ग्वाला मानते थे। परंतु दोनों में अंतर क्या है, अंतर है कि जो नास्तिक जब भगवान को सर्वसाधारण एक मनुष्य मानता है वो महामाया के अधीन होकर कर रहा है, और यशोदा माई जैसे शुद्ध भक्त वो भगवान को जब अपना छोटा सा शिशु मानते हैं तो वो योग माया के अधीन होकर मान रहे हैं। तो ये प्रतिक्रियाएं हमारे अंदर भी हमें देखनी चाहिए कि जब हम भगवान के ऐश्वर्य को देखते हैं तो हमारे अंदर कौन बोलता है, दुर्योधन बोलता है, धृतराष्ट्र बोलता है, अर्जुन बोलता है, या यशोदा माई बोलती है, या इनमें से कोई नहीं साइलेंट मोड में रहता है कम से कम वाइब्रेटर में तो होना चाहिए, थोड़ा तो हिलना चाहिए भगवान के ऐश्वर्य को देखकर, फिर उनमें से देखना चाहिए कि इनमें से कौन बोल रहे हैं हमारे जीवन में। तो ये विभिन्न प्रतिक्रियाएं भगवान के विश्वरूप को देखकर, और ये सात्यकी वहां पर वो आकर बताए कि ये दुर्योधन ये सब कुछ बाहर कर रहा है, तो भगवान ने अपना विश्वरूप दुर्योधन को दिखाया, लाओ तुम्हारी सेना को, बंदी बनाओ इस विश्वरूप को। और दुर्योधन इतना बड़ा मूर्ख, वो सेना को कहता आओ बनाओ बंदी। तो इसलिए यहां पर सात्यकी के विषय में ये सब कुछ बताया गया। अब महाराज विराट के राज्य में ये पांच पांडव और द्रौपदी इनके साथ, तो ये लोग महाराज विराट के राज्य में कब थे? अज्ञातवास। और अज्ञातवास था कि एक साल इन सब को छिपा हुआ रहना है कि कोई इन्हें पहचान न पाए। तो ये छिपे हुए, अब पांडव वो अपने आप को कैसे छिपा सकते थे, क्योंकि ये पांडव ऐसे थे कि इन्हें कोई नहीं जानते हुए भी देख लेता था तो तुरंत इनके लक्षणों द्वारा सभी को पता लग जाता था कि ये पांडव ही होने चाहिए, क्योंकि पांडवों के लक्षण ही अलग थे, इनकी चाल ही अलग थी। जब अर्जुन बृहन्नला के रूप में जब वो सभी कुरु सेना को हराया अर्जुन ने, तो सोचिए बृहन्नला अर्जुन एक नपुंसक, या हम कलयुग की भाषा में क्या कहेंगे, हिजड़ा। हिजड़े की चाल मालूम है ना सबको। तो सोचिए अर्जुन उस स्थिति में, परंतु अर्जुन ने जब दो कदम रखे, चलना किया, चलना प्रारंभ किया, उत्तर कुमार भाग रहा था कुरु सेना को देखकर। उत्तर कुमार कौन था? महाराज विराट का पुत्र। उसने जब कुरु सेना को देखा तो वो भागने लगा, तो अर्जुन उत्तर कुमार के पीछे भागने लगे पकड़ने के लिए। तू भाग कहाँ रहा है, तू क्षत्रिय है और भाग रहा है। तो जितना अर्जुन चले उसे पकड़ने के लिए, उतना देखने मात्र से द्रोणाचार्य दूर से बोल दिए, ये अर्जुन है। केवल चाल, और वो भी अपने आप को छिपाए हुए अर्जुन। सोचिए असलियत में यदि अर्जुन चलते तो सबको पता था कि ये चाल अर्जुन की है, इतने वो विख्यात थे ये पांच पांडव। और ये अपने आप को छिपाए हुए वो एक साल, पूरा एक साल। तो इसलिए कहते हैं कि जो दुर्योधन जैसे राक्षस होते हैं वो अपने आप को छिपा नहीं सकते, और जो पांडव जैसे सद्गुणी होते हैं वो भी अपने आप को ठीक से छिपा नहीं सकते। परंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ये एक साल तक अज्ञातवास में अपने आप को छिपाए हुए रखे। तो इनका परिचय महाराज विराट के राज्य में इस प्रकार से था। महाराज युधिष्ठिर ये सोच रहे थे कि मैं अपने आप को क्या कहूं, यहां पर कैसे मैं अपने आप का परिचय दूं महाराज विराट को। तो महाराज विराट वो युधिष्ठिर महाराज से बहुत उनके रोल मॉडल थे, युधिष्ठिर महाराज। महाराज विराट युधिष्ठिर महाराज से बहुत प्रेम रखते थे। तो अब युधिष्ठिर महाराज वहां पर सेवक बनकर, तो भीम और अर्जुन वो युधिष्ठिर महाराज से कहे कि आप यहां पर सेवक बनकर कैसे रहोगे, यही महाराज विराट के राज्य में। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं महाराज विराट को कहूंगा कि मैं युधिष्ठिर महाराज के राज्य में चौसर खेलने वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अब तक अपने आप को क्षमा नहीं किए कि चौसर के वजह से यहां पर तो आना पड़ा है। तो युधिष्ठिर महाराज ये भी सोच रहे थे कि यहां पर थोड़ा और ट्रेनिंग मिलेगा, ये चौसर खेलने का तो शकुनी की बात में बताएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज वो कंक के रूप में महाराज विराट के राज्य में, उनका नाम हुआ कंक, और उन्होंने अपना परिचय दिया कि वो युधिष्ठिर महाराज के लिए चौसर खेला करते। तो महाराज विराट ने सुना, युधिष्ठिर महाराज के लिए आप चौसर खेला करते, आओ आओ चलो हम भी थोड़ा खेलते। तो युधिष्ठिर महाराज कंक बनकर महाराज विराट, वही सेवा थी उनकी, वो पूरे साल भर महाराज विराट को जब भी चौसर खेलने की इच्छा होती कंक को बुलाते, कंक चलो लगाओ चौसर लगाओ खेलते। तो इनकी यही सेवा। तो ये युधिष्ठिर महाराज ने ये डिपार्टमेंट ले लिया महाराज विराट के राज्य में। अब कल्पना कीजिए कि भीम वो क्या डिपार्टमेंट लेंगे। तो युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव इन्होंने सोच लिया कि ये भीम जो है ये तो हमें पता है कि ये कौन सा डिपार्टमेंट लेने वाले, किचन डिपार्टमेंट। तो भीम ने किचन डिपार्टमेंट ले लिया और उनका नाम हुआ वल्लभा, क्योंकि वो भोजन प्रिय, उनको भोजन प्रिय। इसलिए यहां पर महाभारत में कहा गया है कि किचन इंचार्ज उसी को बनाना चाहिए जिसे खाने की अच्छी आदत हो। और कई बार इस्कॉन में देखा गया कि जिसे खाने पीने में कोई रुचि नहीं उसे किचन इंचार्ज बना दो तो बाकी लोग फिर वो लोग तकलीफ में आ जाते हैं। कि हलवे में काजू डाल, अरे काजू क्या डालना है, मूंगफली डालो वही टेस्ट आएगा। अरे लेकिन हलवे में तो काजू, अरे काजू और मूंगफली से सफेद ही तो है ना दोनों, और दोनों को चबाने से वही तो उस प्रकार से ही तो आएगा, उसमें क्या है। तो जिसको कोई खाने पीने में रुचि नहीं वो सब मूंगफली और ये सब फली वो सब डालता रहेगा। इसीलिए यहां पर भीम बहुत अच्छा रसोईया बने कि आज तक महाराज विराट ने ऐसा भोजन कभी खाया ही नहीं था। क्योंकि भीम वो हालांकि वो रसोईया थे और वो बनाते थे इतना, क्योंकि अरे महाराज का सब खजाना खाली कर रहे थे तो खजाना ही खजाना था, तो कोई बजट का प्रॉब्लम नहीं, फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं, और सारा किचन अपने पास। तो हालांकि भीम वो अपने लिए सब कुछ बनाते थे, उसमें से थोड़ा महाराज विराट को एक डब्बा भेज देते थे, उनको थोड़ा दे देना। तो महाराज विराट को लगता था ये इतना अच्छा मेरे लिए बना रहा है, पता नहीं कि उसमें से 90% तो भीम इनके पास जा रहा है। तो भीम इन्होंने ये डिपार्टमेंट ले लिया, किचन डिपार्टमेंट, और इनका नाम था वल्लभ। अर्जुन, अब अर्जुन अपने आप को कैसे छिपाए, क्योंकि सबसे मुश्किल अर्जुन अपने आप को इनको छिपाना था। तो अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि मुझे उर्वशी ने श्राप दिया था। जब अर्जुन इंद्रलोक गए तो वहां पर अर्जुन, हालांकि वो कुछ शस्त्र लेने गए थे, ऑन ड्यूटी थे, ऑन ड्यूटी गए थे अर्जुन शस्त्र लेने के लिए इंद्र से, इंद्र उनके पिता। तो शस्त्र लेने गए, वहां पर इंद्र ने कहा कि अरे शस्त्र वस्त्र तो लेते रहोगे, थोड़ा यहां पर देखो क्या नमूना है हमारे पास। तो उर्वशी को कहा नृत्य करने के लिए, तो अर्जुन वो ध्यान से उर्वशी की तरफ देख रहे और इंद्र अर्जुन की तरफ देख रहे कि हाँ आगे पसंद लगता है। तो कई बार पिता जो होते हैं उनकी यही चिंता होती है ना कि पुत्र को कुछ पसंद आई कि नहीं, लड़की पसंद आई कि नहीं। तो लड़की ला ला कर दिखाते हैं और जब पुत्र को पसंद नहीं आती तो पिता मायूस हो जाते हैं, अरे इतना सब लड़की ला रहा हूं एक भी पसंद नहीं आ रही। तो इंद्र वो देख रहे थे कि अरे मेरा पुत्र इतने सालों बाद आया है, कि यदि उर्वशी पसंद आ रही है तो इससे अच्छी कन्या और कौन होगी। परंतु अर्जुन किसी और दृष्टिकोण से वो ध्यान से देख रहे। तो फिर इंद्र ने उर्वशी से कहा कि जाओ आज थोड़ा अर्जुन के साथ मीटिंग करो। तो उर्वशी, वो भी अर्जुन के बारे में इतना कुछ सुनी थी, तो उर्वशी भी उत्सुक हो गई कि अरे अर्जुन, अर्जुन के साथ। तो उर्वशी गई और उर्वशी फिर अपने आप को प्रस्तुत करती है, अर्जुन तुम भी अकेले मैं भी अकेले, कसम से। तो इस प्रकार से उर्वशी ने अपने आप को प्रस्तुत किया। और यहां पर अर्जुन क्या कहते हैं, दंडवत माते श्री। तो उर्वशी इतना आग बबूला हो गई कि उर्वशी जैसी अप्सरा को कोई माताजी कहता है, और वो भी अर्जुन। मैं अक्सर ये इंसिडेंट एक बार बताया करता था कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे दादर पर, तो एक 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 लड़की सी आई वो किताब लेने के लिए, शायद 19-20 साल की होगी। तो जब किताब मैं दिखाया तो बातचीत करते करते मैंने माताजी कह, तो देख रही थी, जैसे ही माताजी सुना उसका हाथ रुक गया, हाथ रुक गया, और उसने पहले पीछे देखा, पीछे कोई था नहीं। उसने पूछा, माताजी किसे कहा? मैंने कहा, आप ही को कहा है माताजी। माताजी, मैं माताजी दिख जाऊं? अरे मैं केवल 19 साल की, मुझे माताजी बोलते हैं। तो अंग्रेजी में वार्तालाप चल रहा, हाउ डेयर यू कॉल मी माताजी, आई एम जस्ट 19 इयर्स ओल्ड, यू नो यू डोंट हैव एनी एटिकेट हाउ टू स्पीक टू गर्ल्स। तो मैंने कहा, यू आर पोटेंशियली अ माताजी। तो उर्वशी भी इसी प्रकार से वो आग बबूला हो गई कि ये बोले कि अर्जुन तुम नपुंसक बन जाओ। तो श्राप दे दिया अर्जुन को कि तुम नपुंसक बन जाओ। तो देखिए, अर्जुन को जो वो श्राप मिला नपुंसकता का, तो वो अर्जुन तुरंत नहीं बने, होल्ड पर था वो। ये देखिए, अर्जुन जैसे व्यक्ति, उनको जब श्राप भी मिलता है तो वो जब चाहते हैं तब वो उसे इस्तेमाल करते हैं। तो उसे रिजर्व में रखा था, होल्ड पर था। और फिर जब युधिष्ठिर महाराज ने जब पूछा कि अर्जुन तुम कैसे अपने आप को छिपाओगे, तब फिर अर्जुन ने कह दिया कि हाँ, वो जो मुझे माता उर्वशी ने जो मुझे श्राप दिया था वो नपुंसकता का। सोचिए कि यदि अर्जुन को, इतने बड़े महायोद्धा अर्जुन, जो कि केवल महारथी नहीं अतिरथी, वो अर्जुन एक साल तक, इतना बड़ा क्षत्रिय, वो एक साल तक एक नपुंसक का जीवन जिए, इसे कहते हैं नम्रता। कि युधिष्ठिर महाराज और बाकी अन्य पांडवों को तकलीफ न पहुंचे, इसलिए अर्जुन जैसे बड़े क्षत्रिय वो एक नपुंसक की भूमिका एक साल तक नहीं। और वो भी किए क्या, वो उत्तरा को और अन्य स्त्रियों को वहां पर ढोल बजाना, नृत्य करना, ये सब सिखा रहे। तो सोचिए कि यहां पर जो एक बाण से लाखों अरबों सैनिकों को मार दे, यहां पर खाली डांस प्रैक्टिस चल रहा है। तो ये बिल्कुल विपरीत। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि अर्जुन वो कोई ऐसे योद्धा नहीं थे कि फाइन आर्ट्स में उनको कोई रुचि नहीं थी, कि इसमें भी वो कुशल थे। तो जब अर्जुन वो बृहन्नला बनकर वहां पर पहुंचे, तो महाराज विराट के सामने जब वो आए और उन्होंने कहा कि मैं युधिष्ठिर महाराज के राजमहल में वहां के स्त्रियों को मैं नृत्य सिखाती हूं या सिखाता हूं, पता नहीं क्या बोले। तो महाराज विराट जब उन्होंने अर्जुन को देखा, ये नृत्य, इतने अर्जुन उस समय के जो योद्धा वो इतने बड़े बड़े फुट के, महाभारत में अभी वर्णन है कि अर्जुन 15 फुट के थे। तो सोचिए, इतना बड़ा कोई क्षत्रिय और उनका शरीर ऐसा नहीं कि वो इतने 12 साल अज्ञातवास में, 12 साल वनवास में और एक साल अभी अज्ञातवास में, तो एकदम लुखा हो गए थे। अर्जुन वो उसी प्रकार से, उनका बहुत ही चौड़ा सीना और बड़े बड़े उनके भुजाएं और ये सब, ऐसा उनका शरीर था। तो महाराज विराट ने देखा, ये नृत्य से, तो महाराज विराट सोच रहे थे कि वो नृत्य शाला थोड़ा अच्छा बनाना, उसका सीमेंटिंग वगैरह अच्छा करना, ये इतना बड़ा नृत्य करना शुरू करेगा तो क्या होगा वहां। तो अर्जुन वो बृहन नला बने और नकुल नकुल उन्होंने महाराज विराट को कहा कि वो युधिष्ठिर के राजमहल में ग्रंथिका के रूप में और अश्वों घोड़ों की देखरेख करने में वो माहिर, तो इन्होंने कहा कि मैं आपके घोड़ों की देखरेख यहां पर मैं कर सकता हूं। तो महाराज विराट को तो ये सब बोनस मिल रहा था, सब अरे एक एक करके कोई चौसर खेलने के लिए, कोई रसोईया, कोई मेरी बेटी को उत्तरा को नृत्य सिखाने के लिए, कोई यहां पर घोड़ों के अस्तबल में कोई देखभाल करने के लिए, और फिर सहदेव सहदेव बने तंतीपाल कि वो कहे कि मैं आपके गौओं की रक्षा ग्वाले के रूप में। तो सहदेव एक ग्वाले के रूप में उन्होंने अपने आप को छिपाया और अंत में द्रौपदी जो बनी सैरंद्री। और ये महाराज विराट की पत्नी, इनकी दासी बनी द्रौपदी। तो हालांकि इसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि उस समय क्या क्या वहां पर लीलाएं हुई, बहुत ही रोचक कथाएं हैं वहां की कि वहां पर क्या क्या हुआ ये जब एक साल वहां पर थे। तो यहां पर महाराज विराट ये जब इन्हें पता लगा आगे चलकर कि ये बृहन्नला अर्जुन ये चौसर खेल, ये युधिष्ठिर महाराज, तो महाराज विराट तो गिरे इनके चरणों में कि अरे आप युधिष्ठिर महाराज और आपको मैं एक सेवक के रूप में व्यवहार कर रहा था और भीम रसोईया रसोईया बना दिया भीम को, तो थोड़ा डरने लगे कि शायद कुछ मेरे से गलती हुई होगी, तो भीम को यदि याद आ गया तो मुझे ही पका देंगे। तो जब ये सब कुछ हुआ तो महाराज विराट ने तुरंत, जब भी युद्ध होगा तो मुझे जैसे भी यूज करना है यूज करो, कहीं पर भी खड़ा करना है, एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव जो भी लगाना है कहीं पर भी लगाओ। तो महाराज विराट वो वहां पर उपस्थित थे। अब दुर्योधन वो कह रहा है इस श्लोक में, अत्र शूर महेश्वासा, कि ये जो खड़े हैं ये लोग कोई साधारण नहीं है, ये द्रुपद विराट और सात्यकी, ये शूरवीर हैं और ये महेश्वासा। तो महेश्वासा का अर्थ क्या है? ये महेश्वासा ये तीन अक्षरों या तीन शब्दों से बना है, महान, ईशु जिसे कहते हैं बाण, और आस जिसे कहते हैं आसन। तो बाणों का आसन कौन है? तर्कस नहीं, बाणों का आसन कौन है? धनुष। बाणों का आसन हो है धनुष। तो ये देखो अर्जुन दुर्योधन जब बोल रहा है महेश्वासा कि ये लोग महान बाण ईशों के आसन को पकड़ने वाले लोग हैं ये लोग। ये देखिए संस्कृत भाषा कि सीधा ये भी कह सकता था कि अरे धनुष महान बड़े बड़े धनुष उठाने वाले, नहीं, महेश्वासा बाणों के आसन को, वो भी महान आसन को उठाने वाले ये। तो दुर्योधन भी थोड़ा दिखा रहा था मुझे भी आता है कुछ, मैं ऐसा वैसा नहीं खाली घूमता फिरता यहां पे, थोड़ा मुझे भी संस्कृत संस्कृत का ज्ञान है। तो महेश्वासा कि ये लोग सब बड़े बड़े महान बाणों के आसन को धारण करने वाले ये धनुर्धर ये वहां पर खड़े हैं, और शूरवीर जो कि इसको तो जानते हैं, परंतु यहां पर दुर्योधन इन सब तीन योद्धाओं को कहते हुए वो कह रहा है भीम अर्जुन समायुधि, कि ये तीन भीम और अर्जुन के समान हैं। मतलब भीम और अर्जुन के विषय में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको कि ये लोग कितने महान हैं, परंतु ये तीन जो इनकी शुरुआत की है ये भीम और अर्जुन के समान हैं। तो यहां पर भीम और अर्जुन को यदि हम लें तो भीम को शूरवीर कह रहा है दुर्योधन और अर्जुन को महेश्वासा, कि भीम की शौर्यता और अर्जुन की धनुर्विद्या या महेश्वासता, कि ये दोनों जो कलाएं हैं इन दोनों में, ये दोनों कलाएं इन सब योद्धाओं में जो खड़े हैं। तो यहां पर ये देखिए, सबसे पहले भीम का नाम ले रहा है दुर्योधन, अर्जुन का नाम पहले नहीं लिया। अर्जुन भीम समायुधि नहीं बोल रहा है, वो क्या कह रहा है, भीमा अर्जुन समायुधि। सबसे पहले भीम का नाम ले रहा है क्योंकि दुर्योधन वो सबसे ज्यादा डरता था भीमसेन से, और उसे सबसे ज्यादा डर भीमसेन से था, इसलिए उसका डर वो अब तक छिपा नहीं पा रहा। तो जब दुर्योधन ने भीम का नाम पहले लिया तो द्रोणाचार्य हंसने लगे, तू कितना भी दिखा तेरा डर तू नहीं छिपा सकता। तो इसलिए द्रोणाचार्य हंस रहे थे, देखो नाम भी पहले उसी का आ रहा है जिससे तुम डरते हो। तो यहां पर हम क्या समझते हैं कि हमारे अंदर भी जब किसी के प्रति डर पैदा हो जाता है तो उसके प्रति चिंतन ज्यादा होता है, उसका नाम ज्यादा लेते हैं हम। जैसे कंस, कंस इतना डरा हुआ था उस भविष्यवाणी आकाशवाणी के बाद कि कंस दिन रात कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, दिन रात उसका कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, इतना चिंतन वो करता था कि नारद मुनि भी अचरज खा गए कि मैं भी इतना चिंतन भगवान का नहीं करता, मैं मुझे भी कभी कभी नींद आ जाती। परंतु यहां पर ये कंस दिन रात जब दो ग्लासों को देखता था कृष्ण बलराम, किसी भी दो वस्तुओं को दो खम्भों को देखा कृष्ण बलराम, इसके अंदर कृष्ण बलराम है, ये ग्लास के अंदर कृष्ण बलराम है, अपनी दो पत्नियों को देखा कृष्ण बलराम आ गए, अस्थि और प्राप्ति उसकी दो पत्नियां, उन दोनों को देखते कृष्ण बलराम आ गए। ओ गया, अरे अरे हम तो आपकी पत्नियां हैं, अरे पत्नी कहां, कृष्ण बलराम सब जगह आजकल। तो भय के कारण देखिए कि ये जो एक इमोशन है किसी के अंदर भय का, इसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि कोई व्यक्ति और कुछ नहीं सोच सकता उस समय, केवल वही 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 उसके ऊपर जमा हुआ रहता है उसके दिमाग में। इसलिए इस भौतिक संसार में, जिस संसार को मृत्यु लोक कहा गया है, चारों तरफ ये मृत्यु का भय सबके अंदर मंडरा रहा है, इसलिए मृत्यु के कारण लोग उससे भयभीत होने के कारण यहां वहां भाग भाग कर अपनी रक्षा कर रहे हैं कि कहां जाकर ये मैं अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लूं, मेडिकल इंश्योरेंस करा लूं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखूं, बीमार ना हूं, ये डॉक्टर को उस मेडिकल उस हॉस्पिटल में जाऊं चेकअप करा कर रखूं, केवल ये मृत्यु का भय, मृत्यु का भय। इसलिए एक भक्त को हालांकि माया का या मृत्यु का एक भय होना चाहिए, परंतु उसके इतना नहीं कि भगवान का नाम छोड़ के केवल मृत्यु 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 जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम उसका सोलामाला चल रहा है। तो जैसे यहां पर दुर्योधन का उदाहरण कि इतना वो डरा हुआ, और दुर्योधन ये जानता था, दुर्योधन क्या जानता था कि युद्ध के लिए अर्जुन इतने उत्साही नहीं दिख रहे। दुर्योधन ने देख लिया ये अर्जुन थोड़ा डाउन लग रहा है, इतना ज्यादा उत्साह नहीं लग रहा। परंतु भीम तो बस अब अपनी गदा को यहां वहां हिला रहे, दुर्योधन की तरफ देख रहे, ये थोड़ा शंख बजने दे उसके बाद तू और मैं, अब मिला है समय। तो दुर्योधन जब उसने दोनों को देखा तो अर्जुन तो धीरे धीरे जब देख रहे हैं तो अर्जुन का तो गांडीव श्रम सते हस्तात वेपतुश्च शरीरे में ये सब कुछ हो रहा था, परंतु भीम को कोई कंपन नहीं, वो कंपन दिला रहा था दुर्योधन को। तो बहुत उत्साही भीम, वो इतने उत्साही थे युद्ध के लिए कि वनवास में, महाभारत में वर्णन है कि वनवास में कई बार भीम रात को जोर से चिल्लाते दुर्योधन, और सभी लोग, अरे अभी हम लोग वनवास में है। अच्छा अच्छा इतनी जोर से चिल्लाते कई बार कि दुर्योधन की याद आती। और कि याद कैसे आती, उसको मारने के लिए इसको याद, भीम को याद आती, तो कई बार रात को चिल्लाते जोरदार भीम। और दुर्योधन केवल इसी के लिए नहीं, बल्कि क्यों वो भीम से इतना डरा हुआ था दुर्योधन, क्योंकि भीम ने युद्ध से पहले 3 प्रतिज्ञाएं ले ली थी, और दुर्योधन वो पूरे 13 वर्ष तक भूला नहीं था भीम की ये 3 प्रतिज्ञाएं। और भीमसेन ने 3 प्रतिज्ञाएं कब ली थी, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, उस समय भीमसेन, इन्होंने इतनी जोर से चिल्लाकर ये 3 प्रतिज्ञाएं ली थी कि वहां पर जितने भी उपस्थित थे सभी वो हिल गए, वो ऐसा उन्हें महसूस हुआ कि मानो धरती फटने वाली है। इतनी चिंघाड़ जोर से थी भीमसेन की कि अर्जुन, युधिष्ठिर ये सब डर गए, भीष्म ये सब डर गए, दुर्योधन ये तो सब, इनका तो कहना ही क्या। तो 3 प्रतिज्ञाएं जोरदार भीमसेन ने क्या ली थी, सबसे पहले भीमसेन ने कहा कि ये धृतराष्ट्र के जो सारे 100 पुत्र हैं इनको मैं मारूंगा, अकेला मैं मारने वाला हूं। अर्थात उस समय जब किसी को युद्ध की आशंका भी नहीं थी, भीमसेन ने कह दिया कि युद्ध तो होने ही वाला है, और उस युद्ध में ये धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हैं इनको खत्म मैं करने वाला हूं। तो इसलिए, क्योंकि भीमसेन ने यह प्रतिज्ञा ली थी, इसके वजह से ये जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव जब आते किसी एक पुत्र के सामने मारने के लिए, तो अर्जुन देखते, अरे ये तो धृतराष्ट्र का पुत्र है, तो अर्जुन रुक जाते, भीम को बुलाते, भीमा। और जब भीमसेन दूर से देख लेते कि धृतराष्ट्र का कोई पुत्र, उनमें से यदि दुशासन या दुर्योधन कोई सामने, तो भीमसेन, मारना मत, मैं आता हूं। तो अर्जुन ये लोग रुक जाते और भीमसेन फिर पकड़ के धोते उसे, और केवल अकेले भीमसेन ने धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का काम तमाम किया, अकेले भीमसेन। तो ये प्रतिज्ञा उसी दिन ले ली थी भीमसेन ने, और ये प्रतिज्ञा सबने रिकॉर्ड कर ली थी, विशेष रूप से दुर्योधन ने। और दूसरी प्रतिज्ञा, दुर्योधन का वध करने से पहले उसकी जंगा उखाड़ के फेंकूंगा मैं पहले। क्यों? क्योंकि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो दुर्योधन, उसने अपनी जंघा दिखाकर कहा था कि द्रौपदी यहां आकर बैठो। जब भीमसेन ने यह सुना तो भीमसेन का क्रोध कोई देख नहीं पाता था। तो भीमसेन, क्योंकि उस समय तो भीमसेन कुछ नहीं कर पा रहे, तो भीमसेन ने प्रतिज्ञा ले ली कि दुर्योधन तेरी वही जंघा, इसी जंगा को उखाड़ कर मैं फेंकने वाला हूं युद्ध के बीच। तो दुर्योधन वो हिल गया जब उसने भीमसेन की ये प्रतिज्ञा सुनी। तो ये दूसरी प्रतिज्ञा भीमसेन की। तीसरी प्रतिज्ञा भीमसेन ने ली कि जब दुशासन अपने दाहिने हाथ से द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, तो भीमसेन ने ये तीसरी प्रतिज्ञा ली कि ये जो दुशासन है, इस दुशासन का ये हाथ उखाड़ूंगा मैं पहले। और वैसे ही किया भीमसेन ने, जब दुशासन का वध किया तो दुशासन के छाती पर अपना पैर रखा और अपने दोनों हाथ से दुशासन का दाहिना हाथ, जैसे कोई घास उखाड़ता है, ऐसे उखाड़ा। और इसके साथ खैर एक और प्रतिज्ञा थी जो दुशासन के संदर्भ में, कि उसके छाती का रक्त अपने हाथों में लेकर द्रौपदी के पास भीमसेन लेकर गए, क्योंकि द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं अपने केशों को दुशासन के रक्त से नहीं धोऊंगी। सोचिए इनकी प्रतिज्ञाएं एकदम महाभारत में प्रतिज्ञाएं देखिए, एक एक स्त्री उसकी भी प्रतिज्ञा देखिए कि बालों को धोएगी वो भी कौन से शैंपू से। दुशासन से वो आता ना आजकल है ना, लेमन फ्लेवर, हाँ ये फ्लेवर, एलोवेरा फ्लेवर, तो कौन सा शैंपू, दुशासन रक्त फ्लेवर। तो सोचिए ये उस समय की क्षत्राणिया, कि उस समय की क्षत्राणिया इनके अंदर कि इस प्रकार का, आजकल तो कोई सोचे भी तो कोई मनुष्य आदमी भी थोड़ा टरक जाए कि ये क्या है, बालों को रक्त से, किसी के रक्त से धोना, ये सब चीज। और द्रौपदी ने किया, और जब द्रौपदी ने ये प्रतिज्ञा ली तो भीम सबसे खुश हुआ, क्योंकि द्रौपदी के लिए ये शैंपू मैं ही लेकर आऊंगा। तो ज्यादातर पति इतना खुश नहीं होता शैंपू लाने में, परंतु भीम अपनी पत्नी के लिए ये शैंपू लाने में इतना खुश हुए कि हाँ द्रौपदी इस प्रतिज्ञा को मैंने रिकॉर्ड किया है और मैं ये लेकर आऊंगा दुशासन का रक्त। तो दुशासन के सीने को चीर फाड़ कर वहां से रक्त अपने दोनों हथेलियों में लेकर भीमसेन गए द्रौपदी के पास कि ये देखो फ्रेश ताजा। और द्रौपदी ने फिर, तो ये सब कुछ जब दुर्योधन ने सुन लिया था, सभी ने सुन लिया था, तो दुर्योधन को ये सब कुछ याद आ रहा है, अब समय आ गया। दुर्योधन अपनी जंगा संभाल रहा है और दुशासन अपना हाथ और अपना सीना और उसका जो ब्लड प्रेशर और बढ़ रहा है कि जल्दी बाहर निकलेगा शैंपू। तो भीमसेन की ये तीन प्रतिज्ञाएं थी, इसके कारण दुर्योधन डरा हुआ, इसलिए दुर्योधन यहां पर द्रोणाचार्य को कहते हैं भीमार्जुन समायुधि, कि भीम और अर्जुन, पहले भीम फिर अर्जुन। और महारथी, इनको महारथी कह रहा है दुर्योधन, कि महारथी इसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम लेंगे अर्धरथी, अर्धरथी से शुरू होता है। तो अर्धरथी वो है जो एक योद्धा से युद्ध करने में निर्बल हो, जो एक योद्धा से भी ठीक प्रकार से युद्ध न कर सके उसे कहते थे अर्धरथी। इसके ऊपर रथी जो एक योद्धा से युद्ध करने में विशारद, जो कि निपुण हो, प्रवीण हो, एक एक वन टू वन जिसे कहते हैं, उसे कहते थे रथी। रथी के ऊपर महारथी जो 10,000 योद्धाओं के साथ युद्ध करने में कुशल एवं उसके साथ साथ शास्त्र में प्रवीण, कि कहा गया है कि शस्त्र शास्त्र प्रवीण, कि जो शस्त्र में और शास्त्र में दोनों में प्रवीण है वो है महारथी। तो ये महारथी एक वो 10,000 सामने योद्धाओं के साथ अकेला वो युद्ध कर सकता, उसे कहते थे महारथी। और फिर है अतिरथी, अतिरथी वो जो 60,000 योद्धाओं के साथ युद्ध करने में कुशल एवं शास्त्र में भी प्रवीण। हालांकि 60,000 तो एक संख्या बताई गई है, परंतु जो अतिरथी, अतिरथी का गुण यह बताया गया है कि असंख्य असंख्य योद्धाओं के साथ जो अकेला युद्ध कर सके, और उनमें से भीम, अर्जुन ये सब अतिरथी। तो यहां पर इन तीन और आगे भी जितने भी उनके सूची दी दुर्योधन ने, ये सब इनको महारथी, और दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि ये महारथी हैं, कोई साधारण ऐसे कोई एरे गहरे लट्टू खेरे नहीं खड़े वहां पर, ये सब महारथी खड़े हुए हैं वहां पर। और बीच में जो एक और श्लोक लिया जिसके अंदर उसने अलग अलग कौन कौन से और योद्धा खड़े हैं इसकी भी सूची हम लेंगे। तो यहां पर अब ये श्लोक में दुर्योधन कहता है, अस्माकुम तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सम्यार्थम तान ब्रवीमिते। तो यहां पर अब दुर्योधन कह रहा है कि हे द्विजोत्तम, द्विजोत्तम किसे कहा है? द्रोणाचार्य को, कि द्विजों में उत्तम, इसके अंदर भी उसके ताने हैं, वो भी हम देखेंगे कि द्विजोत्तम क्यों कह रहा है द्रोणाचार्य को कि अस्माकम तु विशिष्टाय। अब यहां पर देखो मेरी सेना में, मम सैन्यस्य, अब ठीक है वो तो सब देख लिया, अब मेरी सेना में देखो कि कौन कौन खड़े हैं। तो आगे के श्लोकों में अब दुर्योधन बताएगा कि उसकी सेना में कौन कौन खड़े हैं, परंतु यहां पर देखिए वो कहता है तान निबोध, जान लो, निबोध का अर्थ है जान लो, हे द्विजोत्तम अस्माकम तु विशिष्टाय, विशिष्ट सैनिक मेरी सेना में, मम सैन्यस्य नायका, बड़े बड़े नायक खड़े हैं मेरी सेना में, सम्यार्थम तान ब्रवीमिते, उनको ठीक ठीक से जान लो हे द्विजोत्तम कि कौन कौन है मेरी सेना में। तो यहां पर सबसे पहले हम इस शब्द को लेंगे द्विजोत्तम। अब उत्तम तो आप लोग सब जानते हैं, और द्विज का अर्थ क्या है, क्यों उन्हें द्विज कहते हैं? हाँ, क्योंकि दो बार जिसका जन्म होता है, ज जन्म से, द्वि दो बार, तो दो बार जिसका जन्म, दो बार कैसे जन्म होता है? हाँ, तो एक बार तो शारीरिक रूप से उसका जन्म होता है, और फिर संस्कार के रूप में फिर से पुनः जन्म होता है, उसे कहते हैं, इसलिए कहा गया है जन्मना जायते शूद्र संस्कारात भवेद द्विज, वेद पाठ भवेद विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, कि जन्म से तो सभी शूद्र हैं परंतु संस्कार से फिर कोई द्विज या ब्राह्मण बनता है। अब यहां पर देखिए कि दुर्योधन ये द्रोणाचार्य को द्विज उत्तम क्यों कह रहा है, कि इसके अंदर भी उसके ताने हैं, टॉन्ट मार रहा है वो, कि द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं और द्विज दांतों को भी बोलते हैं। कैसे? दो बार आते हैं ना, गिर के फिर से आते हैं ना, तो इनका भी जन्म दो बार होता है, इसलिए एक व्यंग्यात्मक दृष्टि से ब्राह्मणों को द्विज इसलिए कहा जाता है कि खाने में बहुत माहिर होते हैं दांतों से, इसलिए द्विज, भोजन प्रिया, खा पी के वो है ब्राह्मण, भोजन प्रिय और विशेष रूप से मिठाइयां बहुत अच्छी लगती हैं उनको, है ना। तो यहां पर ये द्विज इसका डबल मीनिंग कर कर दुर्योधन द्रोणाचार्य को कहते हैं कि एक तो आपको मैं द्विज इसलिए बोल रहा हूं कि भोजन प्रिय है आपको, आप ब्राह्मण हो ना तो खाने पीने में तो माहिर हो, हमारे हस्तिनापुर में रह रहकर खाए इतना, हाँ, इतना बना बना कर खिलाया तो खाने में माहिर, और द्विजोत्तम का एक और अर्थ है कि जो सत्यवादी ब्राह्मण हो। तो यहां पर दुर्योधन ये कह रहा है कि आप सत्यवादी तो होंगे नहीं, क्योंकि आप हालांकि मेरे पक्ष में खड़े हो परंतु आपका हृदय उधर है, तो ये कोई द्विज का लक्षण नहीं होता, तो आप सत्यवादी तो नहीं हो, तो फिर द्विज का दूसरा अर्थ क्या हुआ, बस इसमें ही माहिर हो, तो जो खाने पीने में माहिर है द्विजोत्तम देखो। तो यहां पर वो इस प्रकार से ताने मार रहे हैं द्विजोत्तम, कोई वो फालतू भी ये सब शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा दुर्योधन, कि ताने मारते हुए कि सत्यवादी तो रहने नहीं वाले आप, इसलिए आपके लिए ये द्विजोत्तम शब्द, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि खाली जो भोजन प्रिय खाने पीने वाला द्विज वो हैं आप, और मम सैन्यस्य, देखिए दुर्योधन यहां पर ये भी कह सकता था कि हमारी सैन्य में, हमारी सेना में ये लोग सब खड़े, परंतु दुर्योधन क्या कह रहा है, अलग कर दिया द्रोणाचार्य को, अलग कर दिया और कह रहा है मेरी सेना में देखो कौन कौन खड़े हैं और उनमें से आप भी एक हैं। तो यहां पर दुर्योधन जब मम सैन्य कह रहा है तो उसका जो इतनी आसक्ति है अपनी सेना के प्रति और द्रोणाचार्य को अलग कर रहा है वो कहते हुए, तो इसके अंदर वो ताने मारते हुए क्रोध उकसाने की कोशिश कर रहा है। और इस सब शब्दों के बाद फिर दुर्योधन इन चार श्लोकों में वो 21 योद्धाओं की सूची दे रहा है द्रोणाचार्य को कि 21 हम चार नहीं, पिछले श्लोक से भी यदि हम लें तीसरे श्लोक से, तो तीसरे श्लोक से लेके सातवें श्लोक तक 21 योद्धा पांडव की सेना के 21 योद्धा कौन कौन से, इनकी सूची दे रहा है। दृष्टद्युम्न, भीम, अर्जुन, सात्यकी, विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज, शैभ्य, युधामन्यु, उत्तमौज, सुभद्रा का पुत्र कौन, अभिमन्यु, घटोत्कच, ये किनके पुत्र थे, भीम के पुत्र। तो बीच में जो उसने कहा है च, च एक शब्द इस्तेमाल किया है अस्माकम तो विशिष्टा, ये उसके अंदर, तो च का अर्थ है वो भीम का पुत्र भी है, अकेला भीम नहीं है, और ये भीम का पुत्र घटोत्कच ये कहां से, हिडिंबी से पैदा हुआ था। और फिर ये जो अंतिम पांच हैं, ये अंतिम पांच द्रौपदी के पांच पुत्र कौन कौन, प्रतिविंध्य, श्रुत कीर्ति, श्रुत सेन, शतनिक, श्रुत कर्मा। तो सब याद हो गए, अगले वेडनेसडे को पूछा जाएगा कि कौन कौन से 21 योद्धा, तो सब याद हो गया ना। तो यहां पर अब इन श्लोकों तक ये जो हमने ये श्लोक लिए आज, सातवें श्लोक तक दुर्योधन द्रोणाचार्य को इस राजनीति की भाषा बोलते हुए, इन 21 योद्धाओं की सूची देते हुए, द्रोणाचार्य को ताने मारते हुए, द्रोणाचार्य के क्रोध को उकसाने के लिए दुर्योधन ने ये सब कुछ कहा। अब अगले श्लोक से दुर्योधन कहेगा कि मेरी सेना में या उसकी सेना में कौन कौन खड़े हैं, तो उसके विषय में बताएगा। क्योंकि इतना सब कुछ बताने के बाद बाकी योद्धा डर गए, अरे इतने लोग उधर खड़े हैं, तो दुर्योधन बाकी योद्धाओं को देख रहा है, अरे वो भाग ना जाए इतना सब सुन के, मैं इतना अगर गुणगान करूंगा इनका तो वो लोग फिर हो सकता है कि यहां से वहां चले जाए। तो इसलिए दुर्योधन अब उनको संभालने के लिए, बाकी को संभालने के लिए अब गुणगान करेगा उसकी स्वयं की सेना की, और उसकी चर्चा हम करेंगे अगले बुधवार। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न आज की जो चर्चा हुई उसके संदर्भ में? क्रोध व्यक्त कर रहे हैं तो वो किसी को मैसेज नहीं दे रहे, असली में उनका क्रोध है, और वो क्रोध एक क्षत्रिय का क्रोध है। वो तो उस समय के जो क्षत्रिय वो किसी की क्षति, क्षत्रिय का अर्थ क्या है, क्षति त्रायते इति क्षत्रिय, जब किसी की क्षति का तारण करने के लिए वो खड़े होते थे तो वो अपना क्रोध इस्तेमाल करके उस क्षति को दूर करते थे उस व्यक्ति के जीवन से, और वो भी यदि कोई द्रौपदी जैसी हो। तो यहां पर भीम कोई रजोगुण या तमोगुण के अधीन होकर क्रोध में नहीं आ रहे, उनका क्रोध वर्णाश्रम के अंडर है जो एक क्षत्रिय को आना चाहिए। जब क्षत्रिय क्रोध करता है तो वो धर्म की स्थापना के लिए करता है, और जब धर्म की स्थापना के लिए क्रोध न किया जाए तो वो क्रोध तमोगुण और रजोगुण में। तो दुर्योधन का जो क्रोध और भीम का क्रोध वो एक समान नहीं, हालांकि दुर्योधन भी क्षत्रिय, परंतु क्षत्रिय होने के नाते जब वो क्रोध कर रहा था तो उसका क्रोध अधर्म की स्थापना करने हेतु, इसलिए वो रजोगुण और तमोगुण में था। परंतु जब अब जैसे अर्जुन ने पूरी गीता सुनने के बाद, अभी गीता सुनने के बाद तो कोई सत्वगुण में आना चाहिए, तो गीता सुनने के बाद जब गांडीव लिया और धनुष बाण से मारना शुरू किया तो वो तो क्रोध में किया, परंतु वो क्रोध भगवान की सेवा में, इसलिए वो सत्वगुण से भी परे, शुद्ध सत्व। रजोगुण तमोगुण तो दूर की बात है, वो क्रोध तो शुद्ध सत्व में। क्योंकि द्रोणाचार्य उन्होंने जीवन भर उनका पालन पोषण हस्तिना, वो दुर्योधन का पक्ष में नहीं थे, वो हस्तिनापुर के पक्ष में थे, वो भीष्म के पक्ष में थे, और जो भी उस समय राजगद्दी में धृतराष्ट्र, मतलब जो पदवी थी उसकी, उसके पक्ष में, क्योंकि द्रोणाचार्य को पूरे जीवन भर हस्तिनापुर ने सब कुछ उनका नमक खिलाया, तो वो उस समय एक ब्राह्मण होने के नाते वो नमक हरामी नहीं कर सकते थे, एक कारण। और दूसरा कारण कि यदि द्रोणाचार्य जैसे कि भीष्म, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भीष्म क्यों खड़े थे, भीष्म भी जा सकते थे, भीष्म कृपाचार्य ये सब कुछ सब जा सकते थे, अगर ये सब जाते इनमें से एक भी चला जाता तो वहां पर के सब चले जाते, किसी में हिम्मत नहीं होती ये पांडवों के सामने खड़े होने की। तो भगवान ने इन्हें आदेश दिया था, भीष्म द्रोण कृपा, इनको आदेश दिया था कि वहीं पे खड़े रहो और यहां पर मत आना, क्योंकि यदि वो लोग नहीं होते वहां पर तो दुर्योधन में कोई दम नहीं था कि वो युद्ध के लिए आए, और दुर्योधन नहीं आता तो उसके बाकी भाई नहीं आते, वो लोग नहीं आते तो बाकी सब नहीं आते, और बाकी सब नहीं आते तो फिर अधर्म का नाश भगवान कैसे कर सकते थे। तो ये सब कुछ कनेक्शन था कि भीष्म वहां खड़े रहे तो द्रोणाचार्य रहेंगे, द्रोणाचार्य खड़े रहेंगे तो दुर्योधन रहेगा, दुर्योधन रहेगा तो उसके सारे भाई, उसके सारे भाई तो बाकी सारे जो राक्षस सभी एक साथ आए थे, पूरे पृथ्वी में जितने सारे दुर्योधन के पार्टी के राक्षस थे सभी एक साथ आए थे। तो भगवान ने सोचा कि यहां वहां जाके उनको खत्म करने से अच्छा दुर्योधन को यहां खड़ा कर दो, अपने आप ये सबको इकट्ठा कर कर लाएगा। तो दुर्योधन जब सबको अपने आप इकट्ठा कर कर लाएगा तो मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो ये सब पीछे इसकी योजना थी। हाँ नहीं नहीं उनका नाश तो छोड़ दीजिए, कि श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो भी सैनिक मरा वो सब मुक्ति को प्राप्त किया, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुखमंडल को देखते हुए अपने प्राण त्यागे। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है नारायणी सेना तो छोड़ दो, बाकी दुर्योधन की भी कोई भी जो भी सैनिक थे उन सब का उद्धार हुआ। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।